हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 27 और 28 27 और 28। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और मन से भौतिक विचारों का परित्याग करके पवित्र बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्वैव वेमिषतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। स्मरतव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्ववित्थि निषेदासुर् एतयोरेव किंकरः। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु यतमिदं तत्राग्रह न परः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान श्लोक नंबर 27। भगवान के इन पवित्र लीलाओं से संबंधित इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी अर्जुन द्वारिका से जब आए तो बहुत ज्यादा दुखी थे, और फिर जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह कृष्ण जिसके कारण हमारे पास सब सुख संपत्ति, हमारे साथ, हमारे पास यश, हमारे पास बल, हमारे पास धन इत्यादि था, जो वास्तव में हमारे समस्त सुख का कारण था, वो कृष्ण अब हमें छोड़ के चला गया। युधिष्ठिर महाराज ने उनसे यह भी पूछा कि द्वारिका वासियों के विषय में कुछ बताओ, तो उन्होंने बताया तुम आप जानना चाहते हैं द्वारिका वासियों के विषय में, तो सुनिए। द्वारिका वासी जो कि भगवान के सब संबंधी थे, उनको एक ब्राह्मण ने श्राप दिया और उस श्राप के कारण वो सब आपस में ही लड़कर मर गए। उन्होंने शराब मदुरा पान किया था वारुणी, और उसके बाद एक दूसरे को मार डाला। लेकिन बाद में बताया कि देखिए महाराज, जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, उनके साथ उनके बहुत सारे पार्षद भी आते हैं, और फिर भगवान किसी न किसी योजना से अपने समस्त पार्षदों को पुनः अपने साथ लेके चले जाते हैं, या तो वो सब चले गए, ये भगवान की इच्छा थी। और अब मैं बहुत ज्यादा भगवान को याद कर रहा हूँ। भगवान ने जो ये सब अपना कार्य किया वो सब ऐसे ही था, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे छोटे तथा निर्बल प्राणियों को निगल जाते हैं, उसी तरह भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े बड़े यदु को बिड़ा दिया, और इस तरह सब समाप्त तो हो गया। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ऐसी वस्तु है जिसको यदि हम स्मरण करते हैं तो हमें कृष्ण के वियोग का एहसास नहीं होता। एक ऐसी भगवान हमें औषधि देकर गए हैं विरह की, विरह को दूर करने की, या भगवान के जाने के दुख को समाप्त करने की एक ऐसी औषधि है जिसके कारण हमारे हृदय में जलने वाले ताप को शांति प्राप्त होती है। तो फिर उसी औषधि के विषय में आज अर्जुन हमें बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन कह रहे हैं, देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरिन्तस्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरिन्तस्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरिन्तस्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे। देश कालार्थ युक्तानि, देश कहते हैं आवश्यकता को, काल अर्थात समय, अर्थ यानी महत्ता, युक्तानि यानी से युक्त, और आगे हृत्तापोपशमानि च, हृत कहते हैं हृदय को, ताप यानी जलन, उपशमानी का मतलब होता है बुझाना। वह वस्तु देश काल और स्थान के अनुसार हृदय के ताप को बुझाने वाली है। हरंति स्मरतश्चित्तम, हरंति का मतलब होता है आकर्षित कर रहे हैं, स्मरतः अर्थात स्मरण करने से, चित्तम यानी मन को, जब मैं उसको स्मरण कर रहा हूँ तो मेरे मन को आकर्षण और आनंद प्रदान हो रहा है। वो क्या है, गोविंदाभिहितानि में, गोविंद यानी हर्ष के परम पुरुष, यानी हृदय को आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद, अभिहितानि उनके द्वारा जो ज्ञान मुझे बताया गया था, उनके द्वारा जो उपदेश मुझे दिया गया था, मैं यानी मुझे, अनुवाद, अब मैं भगवान गोविंद द्वारा दिए गए उपदेश की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से पूर्ण रहता है। अत्यंत ही सुंदर अर्जुन हमें बता रहे हैं कि चाहे कोई भी समय हो, कोई भी स्थान हो, उसमें यदि आपके हृदय की जलन को समाप्त करना है, हृदय की ताप को समाप्त करना है, यदि आपको शांति प्राप्त करनी है, तो उसका एक ही, इस कलयुग में उसका एक ही उपाय है। हम अलग अलग वस्तुओं के द्वारा, अलग अलग उपायों के द्वारा अपने हृदय की जलन को, अपने दुखते हुए दिल को आनंद प्रदान करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। सब लोग दुखी हैं और सब लोग दुख का को दूर करने के लिए अलग अलग योजना, लेकिन आज अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे हृदय में जो दुख हो रहा है, हृत्तापोपशमानी, हृदय के ताप को, जलन को बुझाने के लिए मैं आज भगवान के उस उपदेश की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। हरिंत स्मरतश्चित्तम गोविंदाभिहित, जो भगवान ने मुझे उपदेश दिया, वास्तव में अगर आपके दुखों को समाप्त करने वाला कोई एकमात्र उपाय है ना इस संसार में, तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हृदय के सारे ताप, संताप, दुख सब समाप्त हो जाते हैं। ये उस समय जब अर्जुन के हृदय में बहुत दुख हो रहा था, अर्जुन ने कहा था उस समय भी भगवान से कि मुझे इतना दुख हो रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मेरा सिर चिकरा रहा है, मैं अपने आप को अधिक संतुलन में नहीं रख पा रहा हूँ, मेरी चमड़ी जल रही है, उनको कितना कष्ट हो रहा था। और उस समय भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। आज पुनः अर्जुन की वही स्थिति, आज भगवान नहीं परंतु भगवान का उपदेश उसका साथ दे रहा है। भगवान तो उसे छोड़कर चले गए, आज भगवान के स्वरूप में श्रीमद् भगवद गीता उसके साथ है और वही श्रीमद् भगवद गीता हमारे साथ भी है। तो भक्तों, जब भी कभी संकट आए, जब भी कभी हृदय दुखे, जब भी कभी कोई ऐसी दुखदायक अवस्था हो, तो यदि आपका साथ कोई दे सकता है उस समय, तो श्रीमद् भगवद गीता। वो हृदय के ताप को, संताप को खत्म करके हृदय को आनंदित करेगी, क्योंकि गोविंदाभिहितानि, वो गोविंद के द्वारा कही गई है जो समस्त जीवों को आनंद देने वाले हैं। ऋषिकेश के द्वारा कही गई है जो समस्त जीवों की इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले। तो अगर हमें वास्तव में आनंद कहीं से प्राप्त हो सकता है, तो वो भगवान के उपदेश यानी श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने से। और अर्जुन आज वही उक्ति अपना रहे हैं। आज दुख के समय अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के उस उपदेश को याद कर रहे हैं। श्री रूपा जी यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के विषय में संक्षिप्त में बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर अर्जुन का संकेत श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश की ओर है, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर दिया था। भगवान के द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा काल के लिए हैं। भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक वाङ्मय का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत सूत्र सीखने सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत है, जिसे कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए यथा स्त्रियों, श्रमिक तथा उच्च वर्गीय वैश्यों के लिए तैयार किया गया था। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठती थी, वह श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे, और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहे थे, तो उसने पुनः श्रीमद् भगवद गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोग जो शिक्षा देने चाह रहे क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहे थे कि ना केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए अपितु संकट उपस्थित होने पर भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए श्रीमद् भगवद गीता की शरण ली जा सकती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कृपामय भगवान ने अपने पीछे श्रीमद् भगवद गीता की महान शिक्षाएं इसीलिए छोड़ते गए जिससे कोई भगवान के अलक्ष्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूत किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता या भगवान की कोई प्रमाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। कोई भी श्रीमद् भगवद गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की उपस्थिति से उठाया। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर बात है कि वैसे तो इन भौतिक अपनी इंद्रियों से भगवान को अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भगवान की शक्ति अचिंत्य है। वो किसी भी पदार्थ के माध्यम से हम जैसे बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूत किए जा सकते हैं। पदार्थ मतलब कोई भी मटेरियल वस्तु से भी भगवान हम जैसे बद्ध जीवों के सामने आ सकते हैं। तो वो कौन से पदार्थ के माध्यम से हमारे सामने आए हैं? श्रीमद् भगवद गीता, ये साक्षात भगवान की वाणी है। तो श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम महापुराण ऐसे भगवान के शास्त्र जो होते हैं, वो साक्षात भगवान में और उन शास्त्रों में कोई अंतर नहीं होता। जो लाभ भगवान से प्राप्त किया जा सकता है, जो आनंद भगवान से प्राप्त किया जा सकता है, जो आनंद भगवान के सानिध्य से प्राप्त किया जा सकता है, वही आनंद इन शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, तो इन कोई भी श्रीमद् भगवद गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की उपस्थिति से उठाया। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर भगवद गीता के मूल विषयों के विषय में बताते हैं कि वह श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, श्रीमद् भगवद गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे उसकी आवश्यकता थी। अभी यहाँ श्री रूपा जी बोल रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश इसलिए दिया ताकि जो श्रद्धालु मनुष्य भाव बंधन से छूटना चाहते हैं, तो वो श्रीमद् भगवद गीता से बहुत आसानी से अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भावबंधन से छूट सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई। 5 जो हैं भगवद गीता के मूल विषय हैं, उनमें भगवद गीता में 5 मूल विषयों के विषय में चर्चा की गई है, जिनका संबंध किससे है? 1 परमेश्वर, 2 जीव, 3 प्रकृति, 4 देश और काल तथा 5 कर्म विधान। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। अब दो देखो, ये टोटल 5 हैं, उसमें से 2 परमेश्वर और जीव, उनकी क्वालिटीज एक हैं। परमेश्वर भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। परमेश्वर भी कभी जन्म नहीं लेता, जीव भी कभी जन्म नहीं लेता। तो ये जो इनकी क्वालिटीज हैं वो सेम है। दोनों का अंतर पूर्ण तथा उसके अंश के अंतर जैसा है। जैसे समझो, जीव अगर अंश है तो परमेश्वर उसका पूर्ण है। तो जो पूर्ण में क्वालिटीज होती हैं वही अंश में होती हैं। जिस प्रकार समुद्र पूरा समुद्र है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, आप एक ग्लास पानी भर के उसको लेबोरेटरी में चेक कराओगे तो उसमें भी वही क्वालिटीज दिखेंगी। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि उनका अंतर यानी जीव और परमेश्वर का अंतर पूर्ण और अंश के जैसा है। नंबर 3 है प्रकृति। तो प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती है और शाश्वत। अभी देखो प्रकृति वो क्या है, वो जड़ पदार्थ है, उसके अंदर इटर्निटी जो जैसे जीव और परमेश्वर के अंदर जो क्वालिटीज है ना वो नहीं है प्रकृति के अंदर। लेकिन प्रकृति के अंदर क्या है, 3 प्रकार के गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसके द्वारा यह क्रियाशील होती है। और उसके बाद शाश्वत समय तथा असीम अवकाश देश प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। शाश्वत समय जो है वो प्रकृति से ऊपर माना जाता है, परे माना जाता है। और उसके बाद नंबर 5 है कार्यकलाप, जो हम कर्म करते हैं। तो जीव के कर्म विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं जो जीव को प्रकृति के भीतर तथा बाहर बांध सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। ये कर्म है जिसके द्वारा हम इस भौतिक जगत में बारंबार फंसते हैं। और यही कर्मों के द्वारा जब हम वही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर करते हैं तो वही कार्य हमारी मुक्ति का कारण बनते हैं। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है और इसके आगे भी प्रबुद्ध करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में उनका विस्तार किया गया है। 5 विषयों में परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत है। ठीक है, 5 में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल ये शाश्वत हैं, ये इटर्नल हैं। लेकिन इन में से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। अब देखो इनमें से 4 शाश्वत हैं, परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देशकाल, ये इटर्नल हैं, ये कंटिन्यूज होंगे। और उसके साथ जो बाकी जीव, प्रकृति तथा देशकाल हैं वो क्या है, परमेश्वर के नियंत्रण में है और पूरी तरह से स्वतंत्र और परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। यानी परमेश्वर जो है वो परम नियंता है और स्वतंत्र है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। भौतिक गतिविधि मतलब जो कर्म है वो अनादि है लेकिन अगर इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरण किया जाए तो उसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह यह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाता, फिर भौतिक गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर आके शुद्ध सत्व में आ जाता है। भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है। लेकिन प्रकृति की अवस्था जिससे महत्वत्व कहते हैं, इसके अंतर्गत जीव अपनी झूठी पहचान करता है और वह भगवान से भिन्न है। अब पहले यहाँ श्री प्रभुपाद जी जीव और भगवान के विषय में बता रहे हैं कि जीव और भगवान तो इटर्नल हैं, वो प्रबुद्ध हैं, अर्थात वो ज्ञानमयी है, सच्चिद आनंद, क्योंकि जीव जो है वो भगवान का अंश है तो वो भी सच्चिद आनंद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रकृति की अवस्था जिसे महत्तत्व कहते हैं, अब ये महत्तत्व जिसको हमने 24 तत्व पढ़े थे, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच इंद्रियों के विषय और उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, ये सब महत्तत्व जो है उसके अंदर रहने के कारण वो अपनी झूठी पहचान बना देता है। और जीव जो शाश्वत हृदय के अंदर बैठा हुआ है वो अपने आप को या भौतिक शरीर से अपनी झूठी पहचान बना देता है। वैदिक वांग्मय की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा का विच्छेदन करने के निमित्त है। बाकी जितने शास्त्र हैं वो जीव की इस अज्ञानता को दूर करने के लिए है कि आप यह भौतिक शरीर नहीं हो, आप महत्तत्व या प्रकृति नहीं हो, आप जीव हो। और जीव क्या है, भगवान का अंश है और उसे भगवान की सेवा, ज्ञान ये अज्ञानता दूर करने के लिए सारे शास्त्र हैं कि जीव कैसे अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और वास्तविक स्थिति के अनुसार भगवान की सेवा में आ जाए और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भ्रम यानी मोह से मुक्त करते हैं सारे वांग्मय। जब यह भ्रम यानी मोह ज्ञान तथा वैराग्य से समूल नष्ट हो जाता है तो जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। फिर जब जीव का संपूर्ण मोह समूल नष्ट हो जाता है तब वो जानता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मुझे क्या कार्य करना है, भगवान की सेवा करनी है और भगवान वास्तव में भोगता है। यही बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान में भोग की भावना वास्तविक है क्योंकि वो भोगता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो उनके अंदर ये भावना स्वाभाविक है। लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मन चाहे इच्छा है। भावना का यह अंतर ही दो स्वरूपों का भगवान तथा जीव का अंतर है, अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। अतः जीव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्या सिद्धांत है? कि मैं भगवान का अंश हूँ परंतु मैं भोक्ता नहीं हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है और वास्तव में भगवान भोक्ता है और मैं उनका भोग्य हूँ। जीव के अंदर और भगवान के अंदर एक ही अंतर है, बाकी उनकी क्वालिटी सेम है, लेकिन जीव अणु है, भगवान विभू है। भगवान भोक्ता है, जीव भोग्य है। यही उपदेश से यह पूरा सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता का हमें बताया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है और भगवान का धाम भी जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है सनातन बताया गया है। जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब भगवद गीता में क्या है, भगवान बताते हैं कि क्योंकि न जायते मिर्यते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि जीव का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर जब मर जाता है तो भी जीव नहीं मरता, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर वो गतागतम काम कामा लभन्ते, वो कार्य करता है, ऊपर जाता है, कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, कभी बीच के लोकों में घूम रहा होता है। और फिर भगवान उसे निमंत्रण देते हैं कि तुम एक काम करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। क्योंकि जीव मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरी पूजा करोगे, मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें अपने धाम में बुला लूंगा। अपने धाम में आमंत्रित करते हैं भगवान श्रीमद् भगवद गीता में जीव को। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भी यही बात बताए, जीव को भगवान सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वह विधि जिससे जीव भगवान के धाम पहुंच सकता है और जहां आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है सनातन धर्म कहलाती है। क्या है सनातन धर्म? वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपने वास्तविक स्थान में जा सके। सनातन धर्म है कृष्ण से प्रेम करना। हम कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण के आदेश का पालन करें, कृष्ण की भक्ति करें और अपने वास्तविक धाम, अपने वास्तविक जगह जहां पर मुक्त क्रियाशील आनंद से भगवान की सेवा कर सकें, वह है सनातन धर्म। लेकिन श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भी भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान के ही आनंद देकर, भगवान को आनंद देकर ही मैं आनंदित हो सकता हूँ, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे। जब तक हम स्वयं को इस भौतिक शरीर के द्वारा आनंद देने की इच्छा और प्रयास करते रहेंगे तब तक भगवत धाम में एंट्री नहीं मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने को इंगित करती है। क्या है सिद्धि? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण लोक की प्राप्ति, उसकी ओर भगवत गीता में ले जाने के लिए अग्रसर करती है। भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि विभिन्न अवस्थाओं में सकाम कर्म ज्ञान तथा भक्ति से लेकर दिव्य अनुभूति तक कहलाती है। अब श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब बताए गए हैं। तो ये सब विधियां क्या हैं कि हमें भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होकर वास्तविकता की ओर जाना है, और ऐसी दिव्य अनुभूति तभी संभव है जब उपर्युक्त सारी बातें भगवान के साथ जोड़ दी जाएं। सारी बातें मतलब ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब कृष्ण से जब जुड़ जाता है तभी संभव है कि हम कृष्ण को प्राप्त करें। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बदजीव के पापी मन को शुद्ध करते हैं। जो अभी डायरेक्ट से हम भगवान की शरण में नहीं जाते, तो वेदों में जो अच्छे शुभ कर्म बताए गए हैं कि शुद्धिकरण के लिए जब वो जीव करता है जो त्रय विद्यामाम सोम पाहा, तो शुद्ध कार्य करने से जो पापी हृदय मन के अंदर जो दुष्भावनाएं हैं वो शुद्ध हो जाती हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक लेकर जाती हैं। और धीरे धीरे जीव का ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवत भक्ति का आधार बनती है। और जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारी अवस्था शुद्ध हो जाती है, अपवित्रता समाप्त हो जाती है, तो वही शुद्ध अवस्था भगवत भक्ति का आधार बनती है। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है, किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। यानी पहले क्या कर रहे होते हैं, हम सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं को हल करें, तो उसके लिए अलग अलग तरीके जीव अपनाता है। कभी वेदों से तरीके, क्योंकि समस्याएं हैं वो तो हल करनी है, लेकिन बाद में जब जीवन का वास्तविक हल क्या है उसे ये पता चल जाता है कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे पास समस्या क्यों है, क्योंकि मैं भगवान से बिछड़ गया हूँ। और फिर मुझे भगवान से अपने संबंध को पुनः जोड़ना है। जब ये उसको वास्तविक हल समझ में आ जाता है, फिर वो क्या करता है, भक्ति शुरू करता है, भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है, जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से विभेदित किया गया है और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है और पदार्थ का बाह्य आवरण यानी मन तथा शरीर परिवर्तित होकर कष्टमय संसार में फिर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर रीति से सांख्य योग में बताया कि आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं एक दूसरे से। आत्मा और पदार्थ जो है वो अलग है, और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तन हो जाते हैं, आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होती है। और फिर मन तथा बुद्धि ये जो है जो सूक्ष्म शरीर है वो कष्टमय संसार में फिर आते हैं। अतः भगवद गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है और अर्जुन ने इस महान ज्ञान की शरण ली। यानी कि भगवद गीता में भगवान ने बता दिया कि यह शरीर तो चला ही जाएगा ना, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जिसने जन्म लिया है उसका उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म, तो उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन इन विभिन्न कष्टों को समाप्त करने के लिए, जो अब उसको बहुत दुख हो रहा था, अर्जुन उस महान ज्ञान की शरण ले रहा है। उन्हें कुरुक्षेत्र जो उनको भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में प्रदान किया था। तो ये तो हम श्रीमद् भगवद गीता धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल से हमें समझनी है। और आगे सूत गोस्वामी शौनक ऋषियों को कहते हैं, सूत उवाच एवं चिंतयतो जिष्णु कृष्ण पाद सरोरुहम् सौहार्देनातिकादेन शांतासीत् विमलामति एवं चिन्तयतो विष्णु कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शांतासीत् विमलामति एवं चिन्तयतो जिष्णु कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शांतासीत् विमलामति एवं चिंतयतो जिष्णु। जिष्णु अर्जुन का नाम है। सुत गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार जब एवं चिंतयतो उपदेश का चिंतन किया, जब भगवान की श्रीमद् भगवद गीता में बताए हुए ज्ञान का चिंतन किया और कृष्ण पादा सरोरुहम, कृष्ण पादा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, सरोरुहम यानी कमल के सदृश जो भगवान के चरण कमल है उनका जब स्मरण किया तब अति सौहार्देनातिगा, सौहार्देना मतलब घनिष्ठ मित्रता से बहुत ही प्रेम से, अति गाढ़ेना अत्यंत ही घनिष्ठता में, तो क्या हुआ शांतासीत, शांत मतलब आनंदित, उसका दुख समाप्त हो गया, शांति शांत हो गया। और विमला, विमला मतलब जितने भी मल थे, गंदगी थी, दुख था, वो सब विमला मतलब किसी भी भौतिक कलमश का रंच मात्र भी नहीं बचा, मति मन बिल्कुल शांत हो गया। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भगवान के उपदेशों को जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। यहाँ पर हमें सूत गोस्वामी समझा रहे हैं कि जब हृदय बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, अशांत हो जाए, भौतिक कलमश से गिर जाए, तो उसको शांत करने का, विमल करने का तरीका क्या है कि हम भगवान के चरण कमलों में अपने हृदय को तल्लीन कर दें, भगवान के उपदेशों से अपने मन को स्वच्छ करें और उसी से हमें भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस भौतिक जगत में जीव अलग अलग तरीकों से अपने मन को शांत करने का तरीका सोचता है, परंतु यहाँ वास्तविक तरीका बताया गया है जिससे हमारा हृदय कृष्ण पादा सरोरुहम, चरण कम कृष्ण के जो चरण कमल है उनके विषय में यदि जीव सोचता है तो हृदय शांत हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भगवान परम है अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के ही समान है। जिस प्रकार योगी समाधि में आकर आनंदित हो जाता है उसी प्रकार भगवान परम है, जब भगवान का ध्यान लेते हैं तो वो उससे वही आनंद प्राप्त होता है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। तो भगवान का ध्यान कैसे किया जा सकता है? भगवान का नाम लेकर, भगवान के रूप का स्मरण करके, भगवान का गुणगान करके, भगवान की लीलाओं को श्रवण करके, भगवान की सेवा करके। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश छूटने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का अविलंब दूर होना और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाता है। जैसे कोई एक कमरा हो, कोई एक घर हो, वहां पर आप बहुत सारे 4-5 साल से नहीं आए हो तो आपने सारी लाइटें बंद कर दी हैं तो वहां पर कितना अंधकार होगा, है ना? लेकिन जैसे ही आप आते हो, बटन दबाते हो, लाइट ऑन हो जाती है, तो क्या अंधेरा बोलता है कि भाई मैं तो कितने सारे सालों से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अभी मैं आराम आराम से निकलूंगा, जल्दी जल्दी थोड़े निकलूंगा? लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे उसी समय सारा अंधकार दूर हो जाएगा। भगवान भी उसी तरह सूर्य के समान है। हमारे हृदय में चाहे कितना ही दुख हो, कितना ही भौतिक कष्ट हो, कितना ही क्लेश हो, जैसे हम भगवान का स्मरण करते, आप करके देखिए, जब बहुत ज्यादा दुख आए, बहुत ज्यादा परेशानियां, हृदय से भगवान का नाम स्मरण करें, एक जगह पर बैठकर शांति से ध्यान से भगवान का नाम लें, और जैसे ही हम भगवान का नाम लेते जाते हैं तो भौतिक कष्ट समाप्त होते जाते हैं। ये बात यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्ट फर्द भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं, अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। कीर्तनीय सदा हरे। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन उनका संबंध भगवान से है, अतएव उनका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है और उसकी तुलना कभी भी कुलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। बहुत ही सुंदर बात श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के साथ जीव का जो शाश्वत संबंध है उसका दिव्य प्रभाव है, उसका बहुत ही विशेष प्रभाव है। भले ही इस भौतिक जगत में भी भक्त के लिए भगवान का वियोग बहुत ज्यादा कष्टप्रद है, लेकिन जो शाश्वत स्वभाव का हृदय के अंदर आनंद है ना, वो वियोग की अनुभूति से दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है। उससे जो हमें विप्र लंबा भाव, भगवान से दूर होने का जो आनंद, मतलब भगवान को याद करके भक्त कितना आनंदित हो रहा होता है, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि याद करने से भगवान का प्रेम इतना बढ़ता है, जितना मिलन में आनंद नहीं है, जितना कि भगवान को स्मरण करके विरह भाव में तड़पने में जो आनंद मिलता है, इसी विरह भाव को महसूस करने के लिए, इसी विरह भाव का एहसास करने के लिए तुम भगवान महाप्रभु बन के आए थे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी, इसी वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत बनती है, इसकी तुलना इस भौतिक जगत के वियोग से कभी भी नहीं की जा सकती। ये दिव्य उन्माद है, दिव्य आनंद है, क्योंकि दिव्य रिश्ता है, ये दिव्य संबंध है भक्त और भगवान का। इसमें चाहे कुछ भी होता है, चाहे मिलन होता है या जुदाई होती है, सब में आनंद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।